सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं केवलनाणुचोय्य छद्दौवमणिज्यं पवायिः नमिऊणजिणं भणिमो दौवणियोगं गणियसारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी गई थी, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री वीरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी। यह उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ तीसरी पुस्तक में हम पृष्ठ संख्या 41 पर आ गए। मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या कितनी है तो अनंत है, उसका अपना प्रकरण चल रहा है। तो अनंत के अनेक हमने प्रकार देखे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। उसमें मध्यम अनंतानंत के बहुत सारे भेद भी उन्होंने बता दिए, उसका वर्णन बहुत विस्तार से किया है। और वो जो तीन बार वर्गित संवर्गित राशि है, जघन्य अनंतानंत को तीन बार वर्गित संवर्गित करो तो उससे भी अनंत गुणे मिथ्यादृष्टि जीव है, उसकी भी यहाँ बात समझा दी। अब यहाँ हम 41 पृष्ठ पर आए हैं। उसके पहले ये द्रव्य प्रमाण यानी संख्या बताना, क्षेत्र प्रमाण यानी क्षेत्र की अपेक्षा संख्या बताना, एक क्षेत्र में जितने प्रदेश है उतनी संख्या कहना है तो क्षेत्र की अपेक्षा कहते हैं। तो क्षेत्र की पहले इन्होंने काल की अपेक्षा बताया कि जो अतीत काल है कितना है, अतीत काल अभी तक बीत गया तो अनंत काल बीत गया, तो वो अतीत काल के जितने समय है उससे भी अनंत गुणे ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव है, ये काल अपेक्षा कथन हुआ। द्रव्य अपेक्षा क्या कथन किया था, अनंत जीव होते हैं। कौन सा अनंत, मध्यम अनंत अनंत, काल की अभी बात की। क्षेत्र अपेक्षा कितने जीव है, मिथ्यादृष्टि जीव कितने हैं, तो अनंत लोक प्रमाण, एक लोकाकाश में कितने होते हैं प्रदेश तो असंख्यात होते हैं, उससे अनंत गुणा करो इतने मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या है, एक क्षेत्र अपेक्षा कथन हुआ। अब भाव अपेक्षा यहाँ कथन चल रहा है। तो भाव अपेक्षा में ज्ञान जो इसको जानता है उसी को भाव प्रमाण कहते हैं, उसकी तो बात हुई थी कल। यहाँ ये भी बात बताई कि जो सभी पर्याय है वो पर्याय जो है संपूर्ण पर्याय उनको मिथ्यादृष्टि जीव उनका भाग देना है। और फिर वो जो कोई संख्या आती है उसमें चार प्रकार से उन्होंने भी उसको बताया था, एक तो खंडित था, एक भाजित था, एक विरलित था और एक अपहृत था। यानी उनको यह बताना है कि ये जो जितनी सभी पर्याय है उसको मिथ्यादृष्टि की संख्या हमने 13 मान ली है, तो उस एक एक का खंड करेंगे, बहुत सारे खंड होंगे उसके, तो प्रत्येक खंड कितने का होगा, तो 13 का होगा, तो वो मिथ्यादृष्टि जीवों का प्रमाण है, इसको कहते हैं खंडित करना। देखो कोई भी संख्या है, अभी यहाँ उन्होंने कौन सी संख्या ली है उसको बताने के लिए 256 लिया है ना, यहाँ से हम पढ़ेंगे 39 पृष्ठ पर। हाँ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, संपूर्ण पर्यायों के भागहार प्रमाण खंड करने पर, अभी सभी जितनी पर्याय भागहार प्रमाण खंड, अभी हमारा भाग ही मिथ्यादृष्टि जीवों का जो अनंत है, जो 13 हमने मान लिया है वही हमारा भाग भागहार है। भागहार यानी भाजक, भाग देने वाली जो संख्या है, जिसको भाग देते उसको भाज्य कहते हैं, जिसका भागाकर जिसके द्वारा हम उसको डिवाइड करते हैं उसको भागहार कहते हैं। हार यानी करने वाला, भाग देने वाला, हम कहते हैं ना जानन हार, हार यानी क्या, वाला तारणहार, जाननहार, ये सब हार लगाते हैं ना, वैसे ये भाग हार जिससे भाग देना है वो संख्या, यह अपना भाग हार है मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या जो हमने 13 मान ली है। संसारी जीव राशि 13 नहीं, आप नहीं आए थे 2 दिन?
नहीं,
16 है पूर्ण जीव राशि है। नहीं, दूसरे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जीव प्लस सिद्ध सबको मिलकर 3 है, और 13 जो है अकेला मिथ्या दृष्टि जीव है, उसमें भव्य अभव्य सब आ गए। वो तो कितनी अनंतों में चली जाएगी। हाँ, होने दो ना, अभी अनंतों में ये सब भागा गुणाकार चलेगा, उसकी चिंता मत छोड़ो आप, उसकी केवल ज्ञानी के ऊपर छोड़ दो चिंता। वो करेंगे ना चिंता कि नहीं करेंगे? तो उनके चिंता नहीं हो तो हमें क्या जरूरत है चिंता करने की? हाँ, जितना समझ में आवे उतना समझेंगे क्यों। ये बात तो त्रिवार सत्य है पूरी, उसमें से जितनी अपनी ग्रास्पिंग में आती है, और नहीं तो उसमें तो मेरे भी हीनता है ना ज्ञान की, समझ नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते दोनों तरफ से क्या। तो जितना ये गणित का प्रकरण है, हम जितना समझ सकेंगे उतना समझेंगे, थोड़ा बहुत जो कुछ 100 में से आधी चीज समझेगी 0.5% तो भी बहुत हुआ ऐसा कहेंगे हम। और नहीं समझता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम बार बार जब पढ़ते हैं उसको, यहाँ सुनने के बाद और फिर घर में जाकर उसको फिर पढ़ना, थोड़ी बहुत और उसमें ख्याल में आ जाएगी, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। कन्फ्यूज नहीं, जो पहले नहीं पढ़ना बाद में पढ़ो। देखो इसको क्या है, संपूर्ण पर्यायों को भागहार से भाग देना, यानी मिथ्या दृष्टि जीवन से भाग देना, जितने खंड हो गए उसके, किसी एक राशि को किसी दूसरी राशि से भाग देते हैं तो कितने खंड हो गए, हमने कल देखा था ना, 100 को 5 से डिवाइड किए तो खंड कितने हो गए, 20 खंड हो जाएंगे। तो एक खंड कितने कितने का है, 5-5 का है, उसको कहते हैं खंडित राशि। उसी को भागहार की भाषा में कहेंगे तो भाजित राशि, ख्याल है? ये हुआ। देखो क्या है, संपूर्ण पर्यायों के भागहार प्रमाण खंड करने पर जितने खंड आवे, यानी एक खंड भागहार जितना है, इतने खंड आवे उनमें से एक खंड का जितना प्रमाण हो तन्मात्र मिथ्या दृष्टि जीव राशि होती है। इसका आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। इस प्रकार खंडित का वर्णन समाप्त हुआ। ये जो खंडित का उदाहरण, आगे उदाहरण उसके ले लेंगे हम, फिर भाजित का। भाजित में क्या है, पूर्वोक्त भागार ही का, यानी पूर्वोक्त भागार नहीं, अभी हमारे मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या है वही पूर्वोक्त भागार है। संपूर्ण पर्यायों में भाग देने पर जो भजन फल लब्ध आवे, भाग देने पर अभी जो संख्या आएगी उसी को वहां खंड हमने देखा था। अब कहते 100 को 5 से भाग देंगे तो भजन फल कितना आएगा, 20 आएगा, इसको ही लब्ध कहेंगे या भजन फल कहेंगे। तत्प्रमाणे उल्टा उल्टा बताएं, एक एक मिनट। हाँ, पहले जो आया था ना भाग देकर जो आया था उससे भाग देना। अभी खंडित में तो हमने 5 से भाग दिया था, अभी इसको 20 से भाग देना है तो 5 आएगा। तो ये अपना फिगर जो निकालना है वो आगे, इसको फिगर लेके देखा है अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ये भाजित हुआ। तीसरी बात विरलित वाला, तो पूर्वोक्त भागहार को ही विरलित करके अभी हम ओरिजिनल यहाँ जो फिगर दिए उसी को पढ़ेंगे, पहले अभी पढ़ लेते हैं और फिर उसको गणित में भी देखेंगे। पूर्वोक्त भागहार को ही विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर संपूर्ण पर्यायों के समान खंड करके देय रूप दे देने पर उनमें से बहुत खंडों को छोड़कर और एक खंड के ग्रहण करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण होता है। इस प्रकार विरलित का वर्णन समाप्त हुआ। ये तो हमने पढ़ने से कुछ ख्याल में नहीं आता है, ये अभी आगे गणित लेकर समझाएंगे, संदृष्टि तो ख्याल में आ जाएगी। अब अपहृत का बात करते, अपहृत करना यानी उसमें से बात करते जाना, उसी भागहार को शलाका रूप से स्थापित करके संपूर्ण पर्यायों में से मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को कम करना चाहिए। एक बार कम किया इसलिए शलाका राशि में से एक घटा देना, दूसरी बार मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को शेष संपूर्ण पर्याय में से घटा देना चाहिए, दूसरी बार मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को कम किया इसलिए शलाका राशि में से और एक कम कर देना। ऐसे करते 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 यहाँ मिथ्यादृष्टि राशि कम समाप्त होगी और यहाँ शलाका राशि समाप्त होगी, उसको कहते हैं अपहृत करना। अब ये जो बात है वही यहाँ गणित के द्वारा समझाई है। नीचे और भी पढ़ना, 40 पेज के अंतिम दो लाइन देखो, सिद्ध और सासादन सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि। 13 कौन कौन से गुणस्थान है, कहाँ से कहाँ तक बोलो देवेंद्र भाई। 2 से 14 तथा यानी ये कितनी हुई, सिद्ध प्लस सासादन आदि, इसको हमने 3 लिया था, तथा सिद्ध और 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि के वर्ग में अभी हमने 3 लिया, 3 में तथा 3 के वर्ग में है ना, मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको संपूर्ण जीव राशि में मिला देने पर जितना प्रमाण हो उसकी ध्रुव राशि ऐसी संज्ञा करके स्थापित कर देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, 3 प्लस और क्या लिखना आगे देखो, 3 का वर्ग 9 और उसको क्या करना, इस वर्ग को मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण का भाग देना है। 9/13 यानी 3 + 9/13 बराबर। और क्या है, ये जो इसके जो जोड़ आएगा, इसका जो जोड़ आएगा, इसकी जो टोटल आएगी उसको किस में मिलाना है, संपूर्ण जीव राशि में मिला देना। संपूर्ण जीव राशि कितनी है, 16 है। देखो सिद्ध आदि, आदि में वो सासादन आदि सब लेना। देखो पहले सुनो, ये सिद्धों की राशि, सिद्धों की राशि कहेंगे तभी सासादन आदि सब लेना, सिद्ध प्लस वो 13 गुणस्थान, आगे इसको सिद्ध 13 भी कहा है। तो ये 3 प्लस उसी 3 का वर्ग डिवाइडेड बाय मिथ्यादृष्टि जीव 13 प्लस पूरी ही जीव राशि, इन सबकी टोटल करनी है। तो इन सबकी टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छेद समान करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे 13 लिखो और ऊपर इंटू 39 करेंगे तो 3 के हो जाएंगे 39 बराबर। अब सबके नीचे हम 13 कॉमन फिगर, अभी 16 को भी 13 से गुणा करो कितने आ जाएंगे, 208। अभी सबकी टोटल करनी है, 39 और 9 48 और 8 56 256 डिवाइडेड बाय 13, इसको कहेंगे ध्रुव राशि। अब इस ध्रुव राशि के साथ जो कुछ आगे के समझाना है वो समझाएंगे। तो ध्रुव राशि हमको अलग भाषा में कहना है तो 256 डिवाइडेड बाय 13 यानी जीव राशि का वर्ग होगा, 16 जीव राशि है उसका वर्ग और डिवाइडेड बाय 13। अब इतनी ध्रुव राशि रख कर अभी आगे के गणित हम समझेंगे, यानी इस पर अभी वो विरलित वो खंडित भाजित वो सब कुछ है वो समझाएंगे। अब देखते हैं, पहले उन्होंने बीज गणित से समझाया है फिर अंक गणित से समझाया है। अंक गणित हमें थोड़ा सुलभ लगेगा, बीज गणित हम पढ़ेंगे, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत ठीक है, क्यों पढ़ते जाएंगे कभी ना कभी समझेंगे क्यों। देखो क्या कहते हैं, जीव राशि अ प्लस ब, तो अ में क्या लेना है, सिद्ध आदि और वो तेरा गुणस्थान सब मिलकर उसको, जिसको हमने तेरा कहा है, सॉरी जिसको हमने तीन कहा था उसको यहाँ अ लिखा है। यानी यहाँ अक्षरों में संख्या के बदले अक्षर लिए हैं। बीजगणित में ऐसे होते हैं ना, वो फॉर्मूला अक्षरों में ही वो सारे गणित होते हैं। तो ये सिद्ध और अन्य जो गुणस्थानवर्ती दूसरे ऐसे लेकर वो अ है, और मिथ्या दृष्टि जीव राशि ब है। तो सब लिए ना इसमें, मिथ्या दृष्टि लिए और दूसरे से लेकर सिद्ध तक सब लिए, यानी अ और ब में सभी संपूर्ण जीव राशि आ गई। इन संकेतों से, संकेत यानी ये कोड हुआ उसका, चिन्ह हुए। इन संकेतों से पूर्वोक्त रीति के अनुसार ध्रुव राशि निम्न आती है। पहले हमने ध्रुव राशि निकालने के लिए क्या किया था, अब जो हमने पहले संख्याओं में लिखा था अब हम अक्षरों में लिखेंगे, संकेतों में लिखेंगे। पहले हमने तीन को रखा था तो यहाँ अ को रखेंगे, फिर वहाँ तीन का वर्ग को रखा था यहाँ अ वर्ग को रखेंगे, और अ वर्ग को डिवाइड किससे किया था, वहाँ तेरह से किया था तो यहाँ ब से करना पड़ेगा। अ वर्ग डिवाइडेड बाय ब प्लस उसमें क्या करना है, वहाँ हमने 16 संपूर्ण जीव राशि रखी थी, यहाँ अ प्लस ब लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला आया, ये नीचे एक एक है ना, तो इसके फिर समच्छेद करना पड़ेगा। इसका समच्छेद करने से ने ब से डिवाइड भी करो और ब से गुणा भी करो, जहाँ जहाँ डिवीजन में ब नहीं है वहाँ ब से डिवाइड करो, और ऊपर इसके साथ अ का अब हो जाएगा। यहाँ अ प्लस ब डिवाइडेड बाय एक है, वहाँ भी नीचे ब लिखो और ऊपर अ ब और ब होता उसका ब स्क्वेयर हो जाएगा। ये सिंपल ख्याल में आता है। अभी यहाँ भी अब है और यहाँ भी अब है, दो अब हो जाएगा। यानी इसके अगली वाली फिगर कैसी होगी, अ वर्ग पहले लिखेंगे हम प्लस दो अब और प्लस ब वर्ग, और इस सबको डिवाइडेड बाय ब, बराबर। तो जिसको बीजगणित मालूम है तो ये a प्लस बी का ये पूरा स्क्वायर है, यानी अ अधिक ब इसका जो ब्रैकेट करेंगे और उसका स्क्वायर ये है, और नीचे है ब। हमने पहले ऐसे ही देखा था, अ प्लस ब क्या है, संपूर्ण जीव राशि है, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग और उसको डिवाइडेड बाय ब, यानी मिथ्या दृष्टि जीव उनकी संख्या वही आए ना। अंकों में हमने 256 डिवाइडेड बाय 13 लिखा था, क्योंकि वहाँ जीव राशि 16 है, 16 का वर्ग 256 और डिवाइडेड बाय 13, 13 मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या है। इसको कहेंगे ध्रुव राशि। अब ये ध्रुव राशि को लेकर आगे के सब गणित समझाएंगे हम, ये जो खंडित भाजित विरलित वगैरह बताया है उसको अब समझेंगे। यहाँ से पढ़ते अभी, ये ध्रुव राशि आ गई है, उन्होंने बीज गणित से बताया था तो ये ध्रुव राशि आई। अभी अंक गणित से तो हमने पहले ही देखा था, उसको पढ़ते हैं। देखो 3 प्लस 9 बाय 13 यानी 9 डिवाइडेड बाय 13, 3 का वर्ग 9 है और 9 को 13 से डिवाइड किया है मिथ्या दृष्टि जीव, प्लस 16 यानी संपूर्ण जीव राशि, इसकी टोटल करेंगे तो 13 कॉमन फैक्टर नीचे है, तो जहां वो नहीं है वहां उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिंपल गणित, समच्छेद करना कहते हैं इसको। तो इसकी टोटल आ गई 256 अपॉन 13, यानी 256 भाजित उसके भाग देना 13 से, ये अपनी ध्रुव राशि आई। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, कल नहीं समझा था, अभी थोड़ा थोड़ा समझा है ना। ये तो अगले अगले दिन सब समझ में आता है, उसकी चिंता नहीं करना, ये 24 घंटे अंदर सैचुरेट होता है ना। तो आज समझ में नहीं आया तो कोई चिंता नहीं करना। देखो अब यहाँ पढ़ेंगे, इस ध्रुव राशि का जितना प्रमाण है 256 बाय 13, उतने संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग 256 के खंड करने पर क्या कहते हैं। ये जो ध्रुव राशि है ना, तो 200 जीव राशि का ऊपरी वर्ग कौन सा है, जीव राशि 16 है, 16 का ऊपर का वर्ग यानी आगे वाला वर्ग कौन सा, 16 का वर्ग कौन सा है, 256। अभी क्या है, 256 ये जो जीव राशि का वर्ग है उसके हमें खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं? तो एक एक खंड 256/13 वाला है। एक खंड की कीमत है 256/13, और किसके हमको खंड करने हैं? 256 के ही, 256 के ही खंड करने हैं। और एक यानी ध्रुव राशि इतने खंड करना है, ध्रुव राशि है यानी 256/256/13। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, तो गुणा करने का है तो उल्टा करके गुणते हैं ना, 13 को ऊपर रखेंगे, 256 को नीचे रखेंगे, तो 13/256, तो 256/256 कैंसिल होता है, उसको कहते हैं वो अपवर्तन करना, उसका जो समान है हम निकाल देते हैं ना उसको, एक तो ऊपर है अंश में और एक छेद में है, तो वो चला गया, कितनी आ गई फिगर? 13। ये खंडित करने पर 13 आ गए। जीव राशि के वर्ग को ध्रुव राशि से खंडित करने पर एक खंड 13 का आया। ये हमारा मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण है। ध्रुव राशि पहले हमने जो निकाली वो नहीं, जीव राशि को वर्ग करो और उसको मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या से डिवाइड करो, उसको यहाँ ध्रुव राशि कहा है। अब जीव राशि के वर्ग को ही हम खंडित करना है, तो उसका एक खंड कितना है? तो ध्रुव राशि जितना है, ख्याल है? ये तो खंडित वाला हो गया। अब भाजित का वर्णन, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में यानी 256 में ध्रुव राशि का भाग देने पर, वहां ध्रुव राशि इतने खंड करने पर बोला था, अब कहते ध्रुव राशि का भाग देने पर जितना भजन फल आवे उतना मिथ्या दृष्टि जीव का प्रमाण है, जो अभी हमने ऊपर किया था वही यहाँ करना है। फिर 256 उसको भाग देना है 256/13 का, बराबर। तो भजन फल यानी भागा भाग देने पर कौन सी संख्या आएगी? लब्ध 13 आती है। तो ये हुआ भाजित। खंडित में और भाजित में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, नाम का फर्क है। वहां हमने खंड किया ऐसा कहेंगे, यहाँ भाग दिया कहेंगे। ये मिथ्या दृष्टि राशि। अब विरलित का वर्णन करते हैं। अब ये जो 256/13 है उसका विरलन करेंगे हम। देखो क्या कहा, ध्रुव राशि का विरलन करना है, तो ध्रुव राशि कितनी अपनी? 256/13। थोड़ा इसको पूर्णांक अपूर्णांक में लिखेंगे हम, भाग देकर लिखेंगे तो कैसा होगा? 13 × 13 कितने बच गए? 12 बच गए, 126 आ गए। 13 × 9 = 17 उधर से, और 9 13 रह गए, 19 पूर्णांक, 9 13। ये ऐसा ही कहते ना आप में, हाँ, यानी पूर्ण संख्या 19 है और 9/13 ये तो अपूर्णांक में रह गया। अब इस राशि को विरलन करना है, विरलन करते तो उसको एक एक में बिखेर दो, तो 19 बार एक एक लिखेंगे, अंत में कितना बच गया? 9 13, वो 9 13 यहाँ लिखेंगे। इसको कहते इसको विरलन कर दिया, ये विरलित राशि हो गई है ना। क्या कहते हैं? ध्रुव राशि का विरलन करके, अब ये विरलन करने के बाद क्या करना है, और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक पर संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के समान खंड करके देय रूप दे देने पर। समान खंड हमने कितने किए थे? समान खंड किए थे ना हमने, 13 ही हुए थे ना हम, 13 खंड कितने हुए थे उसके? 256/13 थे वो ध्रुव राशि के। एक मिनट, जीव समान खंड करने पर, समान खंड करके स्थापित करने पर उसके समान खंड करने हैं, यही है वो, समान खंड करके स्थापित करने। कितने खंड करना है? 13 का एक खंड है, एक खंड 13 का है, तो सभी खंड कितने होंगे? 256/13 इतने खंड होंगे ना, एक खंड 13 का है, 256/13 इतने उसके खंड हो जाएंगे, तो उतने कितने, 19.9/13। परंतु उसका एक एक खंड कितना है, 13-13 का है, इतने उसके खंड करने हैं, इतने खंड करने हैं। अभी हमने पहले में जो देखा खंडित का उदाहरण, ध्रुव राशि अपनी 256/13 है, तो 256 के 256/13 ऐसा खंड करेंगे तो कितने खंड हो गए। हाँ, एक खंड 13 का, तो ये इतने खंड हो जाएंगे, बराबर। अभी ये 13-13-13-13 ऐसा करेंगे तो कितने बार हो गए, 19, और आगे कुछ नहीं जाएगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जीव राशि के ऊपरी वर्ग के समान खंड करना है। कितने समान खंड करना है, जितनी अपनी विरलन राशि उतने, ऐसा सोचा। भी उल्टी मैं दूसरी तरफ से समझा रही हूँ, हमने 256/13 ये ध्रुव राशि का विरलन कर दिया, तो एक 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 19 बार लिखा, अंत में 9/13 लिख दिया। अब कहते 256 राशि वो देय रूप में कैसे देनी है, कि जितने बार एक लिखा है और आगे जो फिगर है उतनी बार उसके खंड, उतने खंड करने हैं। तो एक 13-13-13-13 19 बार 13 लिखेंगे और एक 9 बचेगा, यहाँ 9 को यहाँ 9 देना, एक में 13 दिए, एक कहो या 13/13 में 13 दिए थे, तो 9/13 में कितना देना पड़ेगा, 9, बराबर। जैसे जहां जहां विरलन एक एक था वहां 13-13 लिखे, और अंतिम 9/13 था उसके ऊपर 9 लिखे। इसको कहेंगे विरलन, इसको कहेंगे देय। अब देख, हाँ, वरली तो हुआ है, विरली तो चाहिए, बराबर। ये जो उदाहरण लिखा है ना उसके ब्रैकेट में वो विरलित करना, वरलित लिखा है उन्होंने, मिस्टेक हो गई वहां। यानी विरलित करने पर भी वो 13-13 आती है, विरलन उसकी विरलित कर देने पर उसमें देय संख्या जो है वो 13-13 की आती है। इसको पढ़ेंगे, देखो ये विरलन वाला फिर पढ़ती हूँ। ध्रुव राशि का विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक पर संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के समान खंड करके देय रूप से दे देने पर उनमें से एक खंड प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि होती है, जो हमने खंडित में निकाला था वैसे यहाँ है। इस प्रकार विरलित का वर्णन समाप्त हुआ। अब ये उदाहरण विरलित का ही वहां लिख रहे नीचे। ध्रुव राशि है 256/13, उसको पूर्णांक में लिखना है, तो 19.9/13। अब इसका विरलन करना है तो ध्रुव राशि का विरलन, 19 तो पूर्णांक है तो 19 बार एक 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 लिखेंगे, और आगे 9/13 है वो ऐसा ही लिखेंगे। देखो यहाँ पर नीचे की लाइन में कितने बार है एक लिखा है, जरा मंजू बहन गिन के देखो, 19 बार है ना, जरा गिनने दो ना उनको। नहीं नहीं, अपना समाधान तो करना चाहिए, क्यों। और उसके बाद 13-13-13 भी 19 बार लिखा, और अंतिम जो 9 बचे वो 9/13 के ऊपर वो 9 लिख दिए, है ना। यानी नीचे का विरलन और ऊपर उसका देय। अतः एक खंड 13 प्रमाण मिथ्या दृष्टि जीव राशि हुई। उसी को अलग 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 भाषाओं में बता, एक 13 वाला एक खंड जो देय रूप से दिया है। अब अपर ऋत का उदाहरण बताएंगे। पूर्वोक्त ध्रुव राशि को शलाका रूप से स्थापित करके, शलाका यानी वो एक संख्या यहाँ हम स्थापित करेंगे, कौन सी, 256/13 यानी 19.9/13 इतने प्रमाण ये क्या हुआ, शलाका राशि यहाँ स्थापित किए। दूसरे बाजू किसको स्थापित करना, हमने दो राशि स्थापित करके उसमें से माइनस माइनस करते जाना है, तो यहाँ पर कौन से मिथ्या दृष्टि, देखो ध्रुव राशि को शला का रूप स्थापित करके और मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण को संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के प्रमाण में से निकाल कर, संपूर्ण जीव राशि कितनी है? 16 का वर्ग 256, तो यहाँ 201 बाजू राइट साइड में 256 लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में शला का राशि 19.913 लिखे। अब हमारा यहाँ अपहृत का प्रकरण चलेगा, तो जो जीव राशि का उपरिम वर्ग है यानी 256 में से मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या हम माइनस करेंगे, 13 को बाद करेंगे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 243, और यहाँ पर से एक कम कर देना, शला का राशि में से एक कम करना। एक बार मिथ्या दृष्टि राशि को बाद किया ना, तो शला का राशि में से एक कम करना, 19 पूर्णांक था वो कितना होगा अभी? 18.913। अब फिर दोबारा दूसरी बार 13 माइनस कर दो तो 230 आ जाएंगे, और यहाँ 17.913 आ जाएंगे। तीसरी बार करो, ऐसे करते 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 जाओ, हाँ 9/13 रह जाएगा, यहाँ भी 9/13 रह जाएगा, यानी दोनों समान रूप से अपहृत हो जाएंगे। ख्याल है? इसको पढ़ेंगे अब। हाँ, यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ 9/13 रह जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, पूर्वोक्त ध्रुव राशि को शला का रूप से स्थापित करके और मिथ्यादृष्टि जीव राशि के प्रमाण को, अभी इस प्रमाण को यानी 13 को किसमें से बात करना है? देखो, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के प्रमाण में से निकालकर, यानी 256 में से निकालकर, शलाकाभूत ध्रुव राशि में से एक कम कर देना चाहिए। हमने उसमें से एक कम कर दिया और वहाँ मिथ्यादृष्टि जीवों का प्रमाण कम कर दिया। फिर भी मिथ्यादृष्टि राशि के प्रमाण को फिर भी यानी दोबारा और एक बार ऐसा शेष संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के प्रमाण में से न्यून करके ध्रुव राशि में एक और कम कर देना चाहिए, यानी पहले मैं 18 पूर्णांक था, अभी 17 पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार पुनः पुनः करने पर हर बार उसमें से 13 घटाएंगे और यहाँ हम इसमें से शलाका राशि में से एक एक कम करेंगे। संपूर्ण जीव राशि का उपरम वर्ग और ध्रुव राशि युगपत समाप्त हो जाती है, एट ए टाइम हो जाती है समाप्त। आपने कहा ना यहाँ 9 बचे और यहाँ 9/13, हम क्या कर रहे थे अभी तक? यहाँ से 13 कम कर रहे थे और यहाँ एक कम कर रहे थे। दूसरी भाषा में इसको अगर हम 13 से डिवाइड करते, एक को लिखना है तो 13/13 कहूँगा, एक हम कम करते हैं 13/13 ऐसा लिखेंगे। यहाँ अंत में 9 बचे और यहाँ 9/13 बचे, एक ही है ना, इक्वल कम, उसका प्रोपोर्शन इक्वली कम हो जाएगा, अंतिम जो फिगर रहेगी उसमें भी। देखो, इस प्रकार पुनः पुनः करने पर संपूर्ण जीव राशि का उपरम वर्ग और ध्रुव राशि युगपत समाप्त हो जाती है। इसमें एक बार निकाली हुई राशि का जितना प्रमाण हो उतनी मिथ्यादृष्टि जीव राशि है। एक बार हमने उतनी निकाली थी, फिर भी समझाने के लिए उसको अपहृत करेंगे, अपहृत राशि कहेंगे उसको, तो अपहृत द्वारा उन्होंने मिथ्यादृष्टि जीवों का प्रमाण बताया। इस प्रकार अपहृत का वर्णन समाप्त हुआ। अभी यही उदाहरण वहां लिख के बता रहे, शलाकार रूप ध्रुव राशि 19.913 जो 256/13 है उसी का यहाँ पूर्णांक में लिखा है, और जीव राशि का ऊपरी वर्ग है 256, वो राइट साइड में लिखा है लेफ्ट साइड में लिखा, 256 में से 13 माइनस करके 243 आले आ गए, और उसी वक्त 19.913 में से एक घटा दिया तो 18.913 रह गए। दोबारा उसमें से 13 निकलते तो 230 रह गए, और यहाँ इसमें से शलाकार राशि में से एक कम करेंगे तो 17.913 रह गए। इस क्रम से उपरिम वर्ग में से मिथ्यादृष्टि राशि का प्रमाण और ध्रुव राशि में से एक एक घटाते जाने पर शलाका राशि और उपरिम वर्ग राशि एक साथ समाप्त होंगे। इनमें एक बार घटाई जाने वाली संख्या 13 प्रमाण मिथ्यादृष्टि है, उतने तो हम घटाए थे, हर बार हमने तेरह 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 ही तो घटाए थे, वही मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या है। शंका, उस मिथ्यादृष्टि जीव राशि का प्रमाण कितना है? तो कहते हैं संपूर्ण जीव राशि के अनंत बहुभाग प्रमाण। क्या कहते हैं? संपूर्ण जीव राशि को अनंत का भाग देंगे तो उसमें से बहुभाग, अनंत बहुभाग कहते हैं उसको, एक भाग छोड़कर अनंत बहुभाग। जैसे हम कहेंगे ना कि किसी संख्या को मान लेते 1000 है और उसको हमने 100 से भाग दिया तो एक भाग कितना हुआ? 10 का हुआ एक भाग। तो उसमें 9 भागों की कीमत कितनी होगी? एक भाग की कीमत 100 है तो रिमेनिंग जो 900 है वो बहुभाग हुआ। एक भाग की कीमत 10 भाग हुए ना, टोटल भाग कितने हुए? टोटल 1000 को 100 से डिवाइड करने पर टोटल भाग हुए 10। अब 10 में बहुभाग एक भाग करना है तो 9 भाग और एक भाग, एक भाग की कीमत है 100, बहुभाग की कीमत है 900। वैसे भी किसी संख्या को जीव राशि को अनंत से भाग दे दो तो जो अनंत आएंगे उसमें से एक बाजू रखना, एक संख्या बाजू रखना और अनंत माइनस 1 एक बाजू रखना, वो बहुभाग हुआ। और उसकी कीमत कितनी? अनंत माइनस 1 को ये वाला जिसने डिवाइड किया था वो अनंत से गुणा कर दो। जैसे हमने 9 को 100 से गुणा कर दिया था 900 आए थे। तो यहाँ क्या कहते हैं? संपूर्ण जीव राशि को अनंत से डिवाइड करो तो एक भाग अनंत का हुआ, तो उतना छोड़कर बहुभाग जो है वो मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण है। इसको कहते हैं अनंत बहुभाग। अभी हमने यहाँ 100 से डिवाइड किया था, मान लेते हम 1000 को 10 से डिवाइड करते तो 100 भाग आते। 100 भाग में एक भाग बहुभाग करना है तो एक भाग यानी एक अलग रखना, 10 उसकी कीमत है, और बहुभाग यानी 99 है तो उसकी कीमत 990 हो जाएगी, है ना? इसको एक भाग बहुभाग कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं संपूर्ण जीव राशि के अनंत बहुभाग प्रमाण मिथ्यादृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। जो प्रमाण संपूर्ण जीव राशि के अनंत प्रथम वर्ग मूलों के बराबर होता है। जीव राशि का प्रथम वर्ग मूल निकालो और उसको अनंत से गुणा करो, अनंत प्रथम वर्ग मूलों के बराबर होता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, संपूर्ण जीव राशि के प्रथम वर्ग मूल को विरलित करके, यानी जीव राशि का प्रथम वर्ग मूल निकालना। 16 का प्रथम वर्ग मूल कितना है? 4 है। तो 4 संख्या को विरलित करके, 4 बार लिखा ना, 4 संख्या एक एक में लिखनी है तो एक 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 हम 4 बार एक लिखेंगे, इसको कहेंगे जीव राशि का प्रथम वर्ग मूल को विरलित करके लिखा। फिर क्या करना? और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर, अब ये प्रत्येक एक के ऊपर क्या लिखना है? जीव राशि को समान खंड करके देय रूप से दे देना। यहाँ 4 बार हम एक एक लिखा है और जीव राशि 16 है, इसमें समान रूप से देनी है तो क्या करना पड़ेगा? 4 4 4 लिखना पड़ेगा। ये समान रूप से दी, प्रथम वर्ग मूल को विरलित किया और प्रत्येक एक के ऊपर जीव राशि को समान खंड करके दे दिया। देय रूप से दे देने पर विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति संपूर्ण जीव राशि का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। अभी हमको ये छोटी फिगर है इसलिए 16 के 4 भाग हमको 4 मालूम है, परंतु यहाँ वो लिखते हैं कि प्रथम वर्गमूल विरलित किया है तो उसके ऊपर भी वो जीव राशि का प्रथम वर्गमूल ही लिखना पड़ेगा। अनंतर सिद्ध राशि यानी उसके पश्चात क्या करना है? अनंतर यानी उसके बाद सिद्ध राशि और सासाधन आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि का, यानी जिसको हमने 13 समझा ना, संपूर्ण जीव राशि के प्रथम वर्ग मूल में भाग देने पर, यानी जो जो 3 है उसका क्या करना है? संपूर्ण जीवराशि के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर, यानी चार में भाग देने पर, यानी चार डिवाइडेड बाय तीन करने पर, जो लब्ध आवे उसे पहले विरलन के नीचे विरलित करके, देखो क्या कहना चाहते हैं, प्रथम वर्गमूल को वो सिद्ध आदि इन जीवों से डिवाइड करेंगे हम, चार बाय तीन आ गए। अब चार बाय तीन को विरलित करना है, ये प्रथम बार विरलित करके हमने यहाँ लिखा है, ऐसे ही रखेंगे। अब दूसरी बार विरलित किसको करना है, जीव राशि के वर्गमूल डिवाइडेड बाय सिद्ध वगैरह जीव, 4/3 को विरलन करना है। 4/3 यानी एक पूर्णांक एक तृतीयांश, तो एक पूर्णांक एक तृतीयांश यानी यहाँ एक लिखो और वहाँ 1/3 लिखो, ये उसका विरलन हुआ ना, एक एक में विरलन करना है, यहाँ एक लिखा और यहाँ 1/3 लिखा, बराबर। अब कहते हैं विरलित करके उपरिम विरलन के एक के प्रति प्राप्त संपूर्ण जीव राशि के प्रथम वर्गमूल को ग्रहण करके, ऊपर जो हमने ये लिखा है चार जीव राशि का प्रथम वर्गमूल, उस चार को क्या करना है अभी ग्रहण करके, यानी इसको चार को लेकर और उसके समान खंड करके अधस्तन विरलन के प्रत्येक एक के ऊपर देय रूप से स्थापन करने पर, अभी इस चार को यहां से निकालो और उसको क्या करो, इसमें दे दो, समान रूप से देना है, तो एक है वहां तीन देना पड़ेगा, 1/3 है वहां एक देना पड़ेगा, समान खंड करने ना, एक में अगर तीन देते हैं तो 1/3 में एक देना है नेचुरली, तो यहां तीन और यहां एक दिया। उसके बाद क्या करना, देखो प्रत्येक एक के प्रति सिद्ध राशि और सासाधन आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी ऐसा देने पर क्या हुआ, यहाँ कौन सी संख्या आई, सिद्ध वगैरह वो जो 13 गुणस्थानवर्ती है उसकी संख्या आ गई, ऐसा करने पर वो सिद्धों की वगैरह संख्या आ गई। यहाँ पर उपरिम विरलन में प्ररूपण किए गए संपूर्ण जीव राशि के एक कम प्रथम वर्ग मूलों को और एक कम अधस्तन विरल मात्र सिद्ध और सासादि आदि 13 गुणस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण को मिला देने पर मिथ्यादिष्टि जीव राशि का प्रमाण होता है। क्या कहते हैं, ये जो हमने वो चार है वो नीचे विरलन कर दिया था, तो इसको छोड़कर रिमेनिंग कितने हैं, 12, इसमें से 12, और ये तो अभी हमने सिद्ध जीव देखे थे, और ये एक 13 जो है वो मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या है। हाँ वही वही अलग अलग रीति से बताइए उनको, बात एक ही बताना है कि मिथ्यादृष्टि जीव अनंत है, उसका जो प्रमाण है वो अलग अलग पद्धति से उनको निकाल कर उन्हें बताया है। इस प्रकार प्रमाण का वर्णन समाप्त हुआ। यही उदाहरण उन्होंने अभी जो हमने बोर्ड पर देखा वही बता रहे हैं, जीव राशि 16 है, प्रथम वर्गमूल 4 है और सिद्ध तेरस 3 है, वो बार बार सिद्ध और शासन आदि वो सब लिखने तो सिद्ध तेरस कह दिया, ये कौन सी तेरस है, वो तेरस में अपने महीने में नहीं देखना, सिद्ध तेरस वाली तेरस धन तेरस है ना, धन तेरस को क्या मानते, धन मिलता है, हम तो बचपन से क्या करते आए मालूम है, हमारे घर में परंपरा चलती थी, हमारे घर में तो अभी 500-600 साल पुराने सब कॉइन्स है, कोई सोने के चांदी के ऐसे सब, तो धनतेरस के दिन उसकी पूजा करते थे, लक्ष्मी की पूजा ऐसे लंबी चौड़ी, वो सब अष्टद्रव्य से पूजा चलती थी, और वो हर साल में एक बार ही निकालते थे, धनतेरस के दिन सुबह निकालना और फिर रात को उसकी पूजा करना, अभी भी करते हैं। अच्छा हमने तो छोड़ दिया ये हमारे, नहीं मैं मायके की बात कर रही हूँ। हाँ ये तो धन की पूजा नहीं, वो धन तेरस नाम कैसा है, धन्य तेरस। महावीर भगवान को मोक्ष कब प्राप्त हुआ? हाँ, अमावस्या के दिन। हाँ, अब यहाँ उनकी वो दिव्य ध्वनि का अंतिम दिन था ना, दिव्य ध्वनि रुक गई और वो अभी योग में चले गए। कौन से योग धारण किया उन्होंने? प्रतिमा योग, सब कुछ बंद कर दिया। तो ये धन्य तेरस हुई और हमने उसको धन कर दिया। दिव्य ध्वनि बंद हुई ना, योग का निरोध तो आगे होगा। वो जो कुछ है, चलो अभी अपन गणित का विषय है ना, उसको यहीं पर रुकते हैं। देखो ये अपहृत का नहीं, ये हम इसका वर्णन चल रहे सिद्ध तेरस वाले तीन। अब उसका जो प्रथम वर्गमूल है उसका विरलन कर देना, यानी चार बार एक एक लिखना, और हर एक के ऊपर देय राशि भी चार 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 लिखना। अब ये जो प्रथम वर्गमूल है उसको, इसमें से एक प्रथम वर्गमूल निकाल कर उसको सिद्ध की राशि जो तीन है सिद्ध तेरस वाली, उससे डिवाइड करना, एक पूर्णांक एक तृतीयांश आएगा। अब इतनी ही राशि को यहाँ विरलन करना, तो एक लिखना और दूसरे लाइन में वहाँ उसके आगे ए वन थर्ड लिखना, एक तृतीयांश लिखना। अब ये जो प्रथम वर्गमूल है उसको इस विरलन राशि के ऊपर समान रूप से देना है। तो जो एक लिखा है उसमें तीन लिखेंगे और वन थर्ड लिखा है वहाँ एक लिखेंगे। ये देय राशि हुई। अब ये जो तीन हुआ ये क्या है? तो सिद्ध और वो तेरह गुणस्थान वाले जी। और जो ऊपर के लाइन में अभी हमने जो विरलन करके चार बार लिखा था उसका एक बार तो हमने वो नीचे उसका विलन कर दिया, इसलिए वो चार चार और चार बारह हो गए। और नीचे का जो वन थर्ड के ऊपर एक दिया वो वन एक लेना। इस तरह से तेरह जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव राशि है और तीन है वो सिद्ध और बाकी तेरह गुणस्थान वाले। अतः नीचे लिखा है ना मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण, प्रथम विरलन की शेष तीन राशियां। शेष तीन क्यों कहा? एक तो हमने नीचे लाया था तो चार 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 वो सब ऐड कर दो तो टोटल उसकी कुल बारह हो गए। और दूसरे विरलन में प्रथम राशि जो है वो सिद्ध तेरस की है उसको छोड़ दो तो दूसरी राशि एक है जो वन थर्ड के ऊपर लिखी थी हमने, उसको मिला देने पर बारह और एक दोनों को मिला दिया, मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण बारह और एक यानी बारह प्लस एक तेरह आ जाता है। किस कारण से? शंकाकार पूछता है, संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? अभी ऐसे ये तो सामान्य गणित है, किसी के वर्ग को उसी से भाग देने पर, अभी चार का वर्ग सोलह है, सोलह को चार का भाग देने पर क्या होगा? वही जो राशि आएगी। तो जीव राशि के वर्ग को जीव राशि से भाग देंगे तो क्या होगा? जीव राशि आ गई। ये तो ऐसे ही कोई गणित के प्रश्न है, उसमें कुछ खास बात नहीं। देखो यहाँ पढ़ेंगे हम, संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है, उसका समाधान। संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर संपूर्ण जीव राशि ही आती है। बीज गणित से समझाते हैं, जीव राशि को क मान लिया तो उसका ऊपरी वर्ग यानी क वर्ग, तो क वर्ग उसको भाग दो क से तो क आ जाएगा, क्योंकि क गुना क से तो क वर्ग हुआ था। अंक गणित से समझाते हैं, 256 और उसको भाग दिया 16 का तो 16 आ जाते हैं। 256 16 का वर्ग है ना, 16 के वर्ग को 16 से भाग दिया तो संख्या 16 आ गई। मंजुबेन ख्याल में आता है? हाँ। अब शंका, दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? अब क्या कहते हैं, पहले 256 को 16 से डिवाइड किया था, अब जो 256 है संपूर्ण जीव राशि का वर्ग, पहले उसको 16 से डिवाइड किया था। अब शंकाकार पूछता है 16 में उसका आधा मिला दो, 16 में 16 का आधा मिला दो। उसके लिए क्या कहा, उसका दूसरा भाग अधिक, 16 का दूसरा भाग है 8 और वो अधिक करो 16 में, तो 16 प्लस 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 16 में उसका दूसरा भाग मिला दो, दूसरा भाग यानी 16 का दूसरा भाग मिला दो, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो कौन सी संख्या आती है, तो उसको कहते हैं तीसरा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है। इसका उत्तर क्या है, यहाँ 16 माइनस 16 का तीसरा भाग, ये ये कैसे निकाला हम देखेंगे ना इसको, आसान है ना। देखो यहाँ ये 16, ये डायरेक्ट हम 24 से करेंगे तो पहले देखेंगे, 24 आया तो अभी 8 का भाग देंगे, 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 और 8 दुनी 16, तो कितना आया इसमें, 10.2 तृतीयांश। अब यहाँ क्या है, 16 में से उसका 1/3 माइनस करो, वही है ना, 16 का 1/3 माइनस करो तो 2/3 बचेगा और ये 10.2 तृतीयांश बच जाएगा। देखो सुलझाते इसको, समच्छेद करो, यहाँ नीचे 3 और ऊपर 48, 16 × 48 48 माइनस 16 कितने हो गए, 32 डिवाइडेड बाय 3 है ना, वही है ना यहाँ संख्या। तो उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, क्या बना दिया, अभी हम क में बात करेंगे, क वर्ग उसको किससे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय 2, तो डायरेक्ट उत्तर क्या आएगा, इज इक्वल टू क माइनस क बाय 3। इसको सुलझा कर भी देखेंगे हम, यहाँ आ गए ना, यहाँ कितने आ गए, 3 क बाय 2 आए ना, 1.1 द्वितीयांश यानी 3 द्वितीयांश आ गए, यहाँ 3 द्वितीयांश क आए ना, यहाँ क वर्ग को 3 द्वितीयांश क से भाग देना है, तो 3 द्वितीयांश तो रखेंगे, ये यहाँ क रह जाएगा, क डिवाइडेड बाय 3 द्वितीयांश, इसी कार से, हाँ 2 क बाय 3, उसी को इसमें भाषा में बोलना है तो, हाँ क माइनस क बाय 3, यही बात तो वही आई, क में से क बाय 3 माइनस किया तो 2/3 का आया ना, नहीं समझे, भाषा अपने अंकगणित में समझेंगे, क के बदले 30 लेते हैं, 30 में से उसका 1/3 कम करना है, क माइनस 1/3 उसका, 1/3 कितना है इसका, 10, 30 में से 10 गए कितने रहे, 20 कहो या 2/3 क कहो, सेम है ना, कोई भी संख्या के लिए है ये जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी संख्या के वर्ग में, वर्ग को पहले हमने कहां से शुरू किया था, क वर्ग को क से भाग देते हैं तो क आता है, क वर्ग को क प्लस क बाय 2 से भाग देते हैं तो क माइनस क बाय 3 आता है, बराबर, यहाँ डिवाइडेड बाय टू प्लस के उसमें उसका आधा उसमें मिला दिया ना, अब आगे का फॉर्मूला कहेंगे। ये तो बात ख्याल में आई, यहाँ लिखा है वही मैं पार्टी पर लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। देखो इसको यहाँ से पढ़ेंगे पहले, ऊपर की शंका, दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है, तो तीसरा भाग इन संपूर्ण जीव राशि आती है। ये ख्याल में आया, अभी क के बदले यहाँ संपूर्ण जीव राशि ऐसा कहो, एक ही बात है या अंक गणित में देखना है? अभी यहाँ देखेंगे, देखो संपूर्ण जीव राशि का ऊपरी वर्ग है 256। अभी हमने सुलझा कर देखा था ना, 256 को डिवाइड करना है कौन से, संपूर्ण जीव राशि में उसका आधा मिला दो, अभी हमने देखा था इस गणित को, तो उतना ही आया था जो हमने सुलझा कर देखा था, क माइनस क क बाय थ्री जितना, 10.2 आया था ना, 16 में से उसका 1/3 माइनस कर दिया था, समाधान है तीसरा भाग इन संपूर्ण जीव राशि आती है। उदाहरण बीज गणित से जो अभी हमने देखा था, क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय टू इज इक्वल टू 2/3 क, ये भी हमने अभी बोर्ड पर देखा, दैट इज इक्वल टू, उसी को अलग भाषा में कहना है तो क माइनस क बाय थ्री। अभी अंक गणित से ये दोबारा समझाते, 16 का दूसरा भाग 8 है, अतः द्वितीय भाग 8 अधिक 16 24 का 256 में भाग देने पर 10.2 आता है, जो जीव राशि 16 का तीसरा भाग हीन है, तीसरे भाग से हीन है, क माइनस क बाय थ्री हमने देखा था ना, तो 16 में से 16 का तीसरा भाग कम कर दिया तो 16 का दूसरा भाग बच गया, तीन भाग में से दो भाग रह गए है ना, तो वो कितने हैं 10.2। शंका, दूसरा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर तीसरा भाग हीन जीव राशि किस कारण से आती है, अभी जो है ना वो पूछ रहे ऐसा क्यों, तो उसको क्षेत्र में बता रहे, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम विस्तार से तीन खंड करके, ये संपूर्ण जीव राशि कितनी है उसका वर्ग, एक संपूर्ण जीव राशि गुणा संपूर्ण जीव राशि, ये उसका क्षेत्रफल बताया, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, हम कहें चौरस में हम चौरस फुट कहेंगे, जैसे रूम गिनने तो क्या कहते हैं लंबी गुना रूंदी, तो ये समान समान रखेंगे, तो ये क्षेत्र में हमने जीव राशि का वर्ग बताया, इसको क्या करना है, वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व पश्चिम विस्तार से तीन खंड कर देना, इसके तीन खंड कर देना, और तीन खंड करके उनमें से एक खंड ग्रहण करके उसके भी दो खंड करके संधित अर्थात प्रसारित कर देने पर, अब ये तीसरे खंड के और ये ब जो है उसको प्रसारित कर देने पर, हाँ अभी यहाँ लिख देंगे हम उसको, प्रसारित कर देने पर, अथवा संपूर्ण जीव राशि का दूसरा भाग रूप विस्तार करके, संपूर्ण जीव राशि का दूसरा भाग रूप विस्तार करके, भाग आयाम क्षेत्र होता है इसको अधिक विरलन राशि के प्रत्येक एक के ऊपर देय रूप से देने पर प्रत्येक एक के प्रति तीसरा भाग इन संपूर्ण जीव राशि प्राप्त होती है। अभी हम तो इतना ही समझेंगे, वो विरलन देय उसके घोटाले में नहीं जाएंगे, ख्याल है ना, एक क्षेत्र से उन्होंने समझाया, हम तो यही फॉर्मूला अभी देख रहे हैं, क वर्ग को हम क से डिवाइड किया था तो डायरेक्ट क आया था, क वर्ग को क प्लस 1 से क बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क में से क डिवाइडेड बाय 3 माइनस करने पड़ेंगे। अब आगे का फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा भाग अधिक संपूर्ण जीवराशि का, संपूर्ण जीवराशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है, क्या कहते हैं क वर्ग को, किससे अभी भाग देना है, क प्लस क बाय तीन। पहले क वर्ग को हमने क प्लस क बाय वन से भाग दिया था, क बाय टू से, सॉरी। अभी यहाँ क वर्ग को क प्लस क बाय थ्री से भाग दे रहे हैं। वो कितनी आएगी राशि, तो जैसे यहाँ दो के आगे वाला तीन माइनस क थर्ड माइनस किया था ना, तो अभी डायरेक्ट निकालना है अभी फॉर्मूला, तो इसका उत्तर आ जाएगा क माइनस क बाय फोर। वही है ना, क माइनस यानी थ्री फोर्थ क आ जाएगा, डायरेक्ट करना है अभी हम इसको सुलझाएंगे। क प्लस क बाय थ्री यानी एक पूर्णांक एक तृतीयांश आ गया उसका, यानी एक इसके साथ करने तो चार तृतीयांश तीन चतुर्थांश आता है। तीन चतुर्थांश क का अर्थ क्या है, एक वन थर्ड वन फोर्थ कम है ना, तीन चतुर्थांश क है तो क्या नहीं है, इज इक्वल टू क माइनस क बाय फोर, वन फोर्थ नहीं है। अभी मैं कोई भी आपको पूछूं कि क में क का दसवां भाग ऐड करो और उससे क वर्ग को डिवाइड करो, तो यहाँ संख्या कौन सी आएगी, क माइनस क बाय ग्यारह। अब यहाँ मैं लिखूं क में क का संख्यात्वा भाग कोई माइनस करो, संख्यात के लिए न लिखते हम, तो क माइनस क बाय नौ प्लस वन, बराबर। अब यहाँ क का संख्यात्वा असंख्यात्वा भाग ले लो, क वर्ग को क प्लस क बाय असंख्यात से डिवाइड करते हैं तो उत्तर क्या होगा, क माइनस क डिवाइडेड बाय असंख्यात प्लस वन। अब क को क प्लस क बाय अनंत से, अभी अनंत में ख लिख रही हूं मैं, क प्लस क बाय अनंत, क वर्ग को क प्लस क बाय अनंत से यहां डिवाइड करते हैं तो यहां उत्तर क्या आया, क माइनस क बाय असंख्यात ये अनंत प्लस वन। अभी मैं कुछ पूछूंगी आप उत्तर देना, हाँ आसान है ना, एक तो मिला देना है, उसमें क्या है, क माइनस हमने लिखा है, ऊपर क भी लिखा है, उसके नीचे क्या लगाना है उसकी तो बात है। अब यहाँ लिखेंगे हम क प्लस क डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात, बोलो बोलो बोलो, अनंत कहाँ है, उत्कृष्ट संख्यात है, उत्कृष्ट संख्यात मैं लिख रही हूँ, अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा है, हाँ कौन सी असंख्यात, हाँ जघन्य में बहुत सारे है, नौ है, हाँ जघन्य परिता संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात के ऊपर जघन्य परिता संख्यात है ना, परिता संख्यात वाला जघन्य में जघन्य भेद, तो यहाँ क डिवाइडेड बाय जघन्य परिता संख्यात आ जाएगा।
हाँ
हाँ अनंत, हाँ वो नहीं था, जैनिज्म में ऐसा नहीं चलता, उसके भी गणित है, क तो बहुत बड़ा अनंत है, तभी तो दूसरे अनंत से उसको डिवाइड कर रहे हैं, क इटसेल्फ इज इन्फिनिटी, वो तो अपने साधे गणित नहीं चलेगा यहाँ। देखो अभी यहाँ हम उत्कृष्ट संख्यात के बदले में अभी दूसरा मैं बता रही हूँ, उत्कृष्ट परिता संख्यात यहाँ लिखेंगे हम, क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय उत्कृष्ट परिता संख्यात। हाँ, तो यहाँ क माइनस क डिवाइडेड बाय जघन्य युक्ता संख्यात, ख्याल है ना? उसके आगे वाला वन प्लस करना, उत्कृष्ट परिता संख्यात के आगे वाले एक ऐड कर दो, क्या होगा? जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात। देखो असंख्यात के तीन भेद है। हाँ, देखो अब क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क्या है, क बाय उत्कृष्ट परिता संख्यात, तो उसका उत्तर क्या होगा? यहाँ क माइनस क डिवाइडेड बाय जघन्य युक्ता संख्यात, बराबर? अभी ऐसा ही लगा दो, यहाँ पर हम उत्कृष्ट युक्ता संख्यात लेंगे तो जघन्य युक्ता उत्कृष्ट युक्ता संख्यात के आगे की वाली फिगर एक ऐड कर दो तो जघन्य असंख्याता जघन्य असंख्याता संख्यात। यहाँ उत्कृष्ट युक्ता संख्यात उसमें एक मिला दो तो जघन्य असंख्याता संख्यात। अब मैं यहाँ उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात लिख दूँ तो ये जघन्य अनंत, कौन सा वाला? जघन्य परितानंत आ जाए। हाँ, ख्याल है ना? ये सिंपल है ना, अभी इसको पढ़ेंगे थोड़ा। ये 44 पृष्ठ पर नीचे तीसरा भाग अधिक संपूर्ण जीवराशि का संपूर्ण जीवराशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है? अभी तो आसान लगेगा ना, उसका चौथा हिस्सा माइनस कर दो, क्योंकि तीन से यहाँ हम वन थर्ड उसमें मिला दे रहे। समाधान, चौथा भागहीन संपूर्ण जीवराशि आती है। यहाँ पर भी कारण का पहले के समान कथन करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण जीवराशि के वर्ग रूप क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम विस्तार के चार खंड करके, उनमें से एक खंड के तीन खंड करके प्रसारित कर देने पर संपूर्ण जीव राशि का तीसरा भाग रूप विस्तार जाना जाता है। अनंतर इन खंडों को अधिक विरलन राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दे देने पर चौथा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आ जाती है, जिसको हमने क वर्ग के द्वारा देखा था। देखो यहाँ पर लिखा है बीजगणित से क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय तीन। हाँ, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3/4 क। वन पूर्णांक, एक पूर्णांक एक तृतीयांश आ गई ना इसमें, यानी चार तृतीयांश नीचे लिखा क वर्ग डिवाइडेड बाय चार तृतीयांश क, क के साथ वो ऊपर का एक क गया तो चार तृतीयांश का तीन चतुर्थांश हो गया। तो तीन चतुर्थांश क कहो या क माइनस क चतुर्थांश कहो, एक ही बात है, एक में से एक चतुर्थांश कम हुआ, तीन चतुर्थांश रह गए। अंकगणित से इसी को समझाते हैं। 16 का तीसरा भाग 5 पूर्णांक एक तृतीयांश है, अतः तृतीय भाग 5 पूर्णांक एक तृतीयांश अधिक 16 इज इक्वल टू 21 पूर्णांक एक तृतीयांश, यानी जीव राशि में उसी का वन थर्ड मिला दिया तो 21 पूर्णांक एक तृतीयांश आ गया। उसका 256 में वो मैं हो गया था, उसको मैं करना खाली, 256 में भाग देने पर 12 आते हैं। हमने देखा है क वर्ग को भाग देना है, क प्लस क का वन थर्ड, यानी 16 का वर्ग है 256, उसको भाग किससे देना है? 16 प्लस 16 का वन थर्ड, जो टोटल आती है 21 पूर्णांक एक तृतीयांश, तो उसका भाग देने पर संख्या कितनी आती है? 12 आती है। 12 क्या है? 16 का 16 में से उसका 1/4 माइनस किया हमने, 16 में से उसका 1/4 4 माइनस किया या 3/4 लिया कहो, तो वो 12 आती है, तो चौथा भाग हीन है, शंका। इसी प्रकार संख्या तो भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है? अभी हमने देखा था ना, संख्या तो भाग उसमें से उसमें ऐड कर दो तो आगे वाली उसका उत्तर क्या आ जाएगा? संपूर्ण जीव राशि में संपूर्ण जीव राशि के संख्यात विभाग में एक अधिक करके उसका निकालना भाग, वो उसमें से हीन कर देना। अपनी भाषा में क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय नौ न होगा, हम न कहते उसको संख्यात के लिए, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, क माइनस क डिवाइडेड बाय न प्लस वन, है ना। देखो यहाँ लिखते हैं समाधान, संख्यात्वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है, वो संख्यात्वा भाग ही लिखा है, परंतु वो संख्यात्व भाग में वो वन प्लस करना है, फिर भी उसको संख्यात्वा भाग ही कहेंगे। उदाहरण बीजगणित से, क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय नौ न इज इक्वल टू न डिवाइडेड बाय न प्लस वन क। ये हमेशा हमारी जो हम थ्री फोर्थ वगैरह लेते थे वैसा ही उदाहरण, या उसी को आगे समझाते हैं, क माइनस क बाय नौ प्लस एक संख्यात इज इक्वल टू न, संख्यात के लिए हमने यहाँ न लिखा। अपना जो फॉर्मूला है वैसे ही है ना, जब क बाय टू ऐड करते थे हम तो क बाय थ्री माइनस होता था, क में से क का तीसरा भाग क में से माइनस होता था। अभी संख्यात भाग अधिक है यहाँ डिवीजन में, तो वहाँ क माइनस क का संख्यात भाग उसमें न, अगर हमने संख्यात लिया है तो न प्लस एक उसमें लेना। शंका, उत्कृष्ट संख्यात भाग अधिक एक सॉरी उत्कृष्ट संख्यात भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है? उत्कृष्ट संख्यात के आगे वाला कौन सी फिगर है? हाँ, जघन्य परिता संख्या था, तो कहते हैं जघन्य परिता संख्यात वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है। इसका कारण समझ में है, उत्कृष्ट संख्यात प्लस एक इज इक्वल टू जघन्य परिता संख्यात। अब कहते हैं शंका, असंख्यात वा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर क्या आता है? तो कहते हैं असंख्यात वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि, उन्होंने तो कॉमनली ऐसे लिख दिया, परंतु हम कहते हैं ना वो जो असंख्यात विशिष्ट है उसमें और एक ऐड कर दो, असंख्यात प्लस एक, वो भी असंख्यात ही है। शंका, अब उत्कृष्ट असंख्यात वा असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के बाद वाली फिगर कौन सी होगी? कौन सा आनंद? जघन्य परितानंद। तो कहते शंका है, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? तो उसका समाधान, जघन्य परितानंत वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है। उसका कारण हमें मालूम है कि जो उत्कृष्ट संख्याता संख्यात है, असंख्याता संख्यात, उसके उसमें एक ऐड कर दो तो जघन्य परितानंत संख्या आती है। फिर शंका, अनंत वा भाग अधिक अभी जीव राशि का भाग अनंत कर रहे, देखो जिसको अनंत से भाग देते वो मूल में अनंत के कितने पट होगा, अनंत अनंत भाग गुणा होगा, तभी तो उसको अनंत का भाग दे सकते, ख्याल है ना। ये सब गणित ही इन्फिनिट्स के, वहां हम लौकिक गणित में एक बार इन्फिनिट लिख दिया और सब समान ही कह देंगे उसको, न कहो या न प्लस वन कहो इन्फिनिट में, उनके लिए एक ही है, वैसा यहाँ नहीं है। देखो शंका क्या है, अनंत वा भाग अधिक संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है? तो अनंत वा भागहीन संपूर्ण जीव राशि आती है। यहाँ भी लिखा है तो अनंत वा भाग, फिर भी उसमें जो कुछ पर्टिकुलर अनंत है उसमें एक और मिला देना चाहिए। सर्वत्र कारण का कथन पहले के समान करना चाहिए। अब यहाँ पर उपयुक्त गाथाएं दी जाती हैं। उपयुक्त गाथाएं यानी जो गणित के कुछ भागाकार संबंधी कुछ नियम है, फॉर्मूले है, वो उपयुक्त गाथाएं यहाँ बताएंगे। 24 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे, अवहार वड्डी रुआ नवहारा दो हुलद्ध अवहारो रुवहियो हानिये हो दिउ वड्ढीये विवरी दो। नीचे लिखते हैं उसका अर्थ, भागहार में उसी के वृद्धि रूप अंश के रहने पर भाग देने से जो लब्ध भागहार आता है वह हानि में रूपाधिक और वृद्धि में इससे विपरीत अर्थात एक कम होता है। अभी जो हमने देखा है वही फॉर्मूला वहाँ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? रूप अधिक यानी एक से अधिक। यानी हानि में रूप अधिक, यानी हानि में रूप से अधिक करना यानी एक से अधिक करना, और वृद्धि में इससे विपरीत यानी एक को कम कर देना। अभी हम इतनी बार तो वृद्धि के उदाहरण देख रहे थे। क वर्ग को क प्लस क बाय टू से हम डिवाइड कर रहे थे, तो क प्लस कर दिया था ना, भागहार में क प्लस किया था, क प्लस समथिंग। तो उसका जो लब्ध आया था उसमें हमने क में से कुछ माइनस किया। क्या माइनस किया? यहाँ क बाय टू मिलाया था, भागहार में क बाय टू मिलाया था, तो यहाँ क में से क डिवाइडेड बाय थ्री माइनस किया है। यहाँ भागाकार में क बाय टू मिलाया था, तो इस दो में और एक मिला दो, तीन हुआ, और उसको माइनस कर दो। क बाय थ्री करना, यानी यहाँ टू प्लस वन इसमें और बीच में माइनस वाला। यहाँ जो भागार में प्लस किया था, भागार में क का दूसरा हिस्सा प्लस किया था, तो उसके लब्ध राशि में क का तीसरा हिस्सा हीन रूप से आएगा, हीन यानी माइनस। अब यहाँ उल्टा करो, इसका सूत्र यहाँ बदलो, क में से क माइनस क बाय टू करो तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ख्याल आता है? ये गणित चलते थे 2000 साल पहले। देखो क्या कहते हैं, ये वृद्धि लिखा है, वो वृद्धि करना सेकंड लाइन में। अरविंद भाई कुछ कहते हैं? हाँ अरविंद भाई, यही है ना, और क्यों चर्चा है? अच्छा सुलझाएंगे, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे वो सही है कि गलत है। क्यों? नहीं नहीं, अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी ना, वो तो सही है। क वर्ग को अभी तक हमने क बाय टू मिला कर देखा था, अभी क वर्ग को क माइनस क बाय टू करेंगे तो क में से क का आधा गया, कितना रह गया नीचे, कितना रह गया? 16 में से 8 गए, कितने रह गए? 8 ही रह गए ना, तो क बाय टू रह गया नीचे, तो भागाकार का भागाकार यहाँ दो में चला जाएगा और इसमें से एक को कम हो जाएगा। हाँ दो क हो जाएगा, तो क में दो क बाय, एक एक मिनट, मेरी कुछ गलती हो रही। क प्लस टू माइनस वन, नहीं एक मिनट, हाँ टू माइनस वन करना है वहाँ, यहाँ भी टू माइनस वन उसमें ऐड करना, मैंने थ्री लिखा है, ये टू माइनस वन करना, टू प्लस वन उसमें किया था ना, यहाँ टू माइनस वन करना। देखो फिर से हम कहेंगे, ये सूत्र फिर लिखेंगे, क वर्ग डिवाइड बाय अपना पहले वाला पॉजिटिव वाला लिखेंगे पहले, क प्लस क बाय टू, उसका उत्तर क्या आता है? क माइनस क बाय टू प्लस वन, टू प्लस वन। अभी जहां जहां माइनस है वहां हम प्लस करेंगे और जब प्लस है उसमें माइनस करेंगे। अभी जब यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क प्लस क, दो क आ जाएंगे, और अपना उत्तर भी कब दो का आया था ना, फिर से दोबारा करेंगे, हम भूल गए ना। देखो क वर्ग डिवाइडेड बाय क माइनस क बाय टू, क में से क बाय टू गया यानी क बाय टू रह गया, यानी क वर्ग डिवाइडेड बाय क बाय टू, बराबर। तो डिवीजन की डिवीजन ये तो गुणाकार के रूप में यहाँ चली जाएगी, और क को क वर्ग को क से भागने पर यहाँ क आएगा, तो दो क उसका उत्तर आया। और यहाँ हमने क्या लिखा है, क वर्ग डिवाइडेड बाय क माइनस क बाय टू इज इक्वल टू क प्लस क बाय टू माइनस वन, यानी क प्लस क आया, क प्लस क दो क आया। अभी वहाँ तीन लिख के देखते हैं, दो में कन्फ्यूजन है ना, यही ये यही पर यही से ही लिखा है, क्या कहते हैं। देखो ये माइनस वाला आपको समझना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अभी समझा। अभी तीन लेके देखते हैं, पहले हमने दो लिया था ना, अभी क वर्ग डिवाइडेड बाय क माइनस क का तीसरा हिस्सा, अपना उत्तर कितना आना चाहिए, क प्लस क डिवाइडेड बाय, हाँ अभी थ्री माइनस वन यानी टू, बराबर। हाँ तो तीन द्वितीयांश, ये जो क प्लस क बाय टू, एक पूर्णांक एक द्वितीयांश है ना वो। अब यहाँ देखते हैं, क में से क का तीसरा हिस्सा चला गया, कितने रह गए, टू थर्ड क यहाँ रह गया, टू थर्ड क, बराबर है। तो ये तीन ऊपर चला जाएगा और क को यहाँ क रह गया, तीन द्वितीयांश क रह जाएगा। तो तीन द्वितीयांश क कहो या क प्लस क बाय टू कहो, एक ही है ना बात। अभी कितना भी हीन अधिक करो, ये तो अपने पास फॉर्मूला तैयार है, क्या लगता है, खाली वो जहाँ प्लस प्लस है वहां माइनस माइनस कर दो उल्टा सुल्टा। क्या दो लाइन की गाथा में कितना महान वो गणित बता दिया उन्होंने। इसको फिर पढ़ेंगे, इसका अर्थ देखो, 24 का अर्थ, भागहार में उसी के वृद्धि के अंश रहने पर जो संख्या जिस संख्या का भाग देते हैं उसका ही वृद्धि रूप अंश रहने पर भाग देने से जो लब्ध भागहार आता है वह हानि में, पहले तो हमने क में उसका आधा मिला दिया था, तीसरा भाग मिला दिया था, चौथा भाग मिला दिया था, असंख्यात्वा अनंतवा वो सब देखा था, अब यहाँ हानि कर रहे हैं। पहले वृद्धि में दिया देखा था, तो वृद्धि में देखा था तो उसमें एक मिलाकर उसमें से माइनस कर दिया था हमने, यानी क में उसका आधा भाग मिलाया था तो उत्तर में लब्ध में क्या किया था, क माइनस क बाय थ्री किया था, यानी माइनस करके वो दो में एक मिलाकर उसको छेद में रखा था। अब उल्टा समझा रहे हैं, हानि में तो क वर्ग डिवाइडेड बाय क माइनस क बाय टू करेंगे तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, क प्लस में चला जाएगा, यहाँ भागहार में हानि रूप है तो उत्तर में वहाँ प्लस में चला है, वृद्धि रूप हो जाएगा, उसका उत्तर ज्यादा आ जाएगा। नहीं समझे, भागहार छोटा होता है तो उत्तर ज्यादा आता है, तो वहां क प्लस क बाय कितना लेना, वहां तो हम दो में एक मिलाते थे वृद्धि में, अब वहां दो में से एक कम कर देना, ऊपर प्लस किया और यहाँ टू माइनस से एक करना है। तो पहला हमने सूत्र कैसा लिखा था, अभी क बाय टू के बदले में यहाँ क बाय हम न लिखते हैं, पहले हम प्लस का सूत्र लिखेंगे, क वर्ग डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय नौ, वृद्धि रूप है ना, यहाँ छेद में यानी भागार में वृद्धि रूप है, तो यहाँ क माइनस लिखेंगे, क माइनस क डिवाइडेड बाय न प्लस वन, ये ख्याल में है। अब हानि की बात करेंगे, क स्क्वायर डिवाइडेड बाय क माइनस क बाय नौ होगा, तो उसके उत्तर में जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, क प्लस क डिवाइडेड बाय अभी न माइनस एक कर देना, थोड़ा अलग है ये विशिष्ट संख्या के, वही उसी का कुछ भाग उसमें मिला दो या घटा दो भागार में से, तो इसमें उल्टा आता है, यानी छोटे से उन्होंने सूत्र में कितना बड़ा ऐसा फॉर्मूला बता दिया है। अभी इसी को उदाहरण यहाँ बीजगणित से लिखा है, जो हमने अभी बोर्ड पर देखा है ना स्लेट पर, उसी को यहाँ बता रहे, देखो उदाहरण बीजगणित से, क वर्ग उसको भाग देते हैं डिवाइडेड बाय क प्लस क बाय नौ इज इक्वल टू क माइनस क डिवाइडेड बाय नौ प्लस एक, अभी जो हमने बार बार जिसको देखा था। अब हानि में बता रहे क वर्ग डिवाइडेड बाय क माइनस क बाय नौ न, पहले हमने उसमें वृद्धि में लिया था भागार में, उसको वृद्धि की थी, अब यहाँ भागार में हानि है, तो उसका उत्तर कितना आता है, क प्लस करना, पहले क माइनस किया था, अब क प्लस क डिवाइडेड बाय नौ माइनस एक न माइनस एक न माइनस एक, पहले न प्लस एक था वहां भी न माइनस, हाँ। अब अंकगणित से देख रहे हैं, इसी को अंकगणित में देखो, पहले में एक डिवाइडेड बाय वन प्लस हाफ यानी एक डिवाइडेड बाय डेढ़, एक को डेढ़ से डिवाइड करते हैं तो उल्टा करके गुणा करना, तो दो तृतीयांश आ गए, दो तृतीयांश कहो या एक में से एक तृतीयांश को माइनस किया कहो, एक ही बात, उसी को अभी माइनस में समझाते, एक में से वन थर्ड माइनस करना, यहाँ प्लस की साइन है वह माइनस करो, पुस्तक में वो छप गलत है, वो माइनस करना, समझ में आया, अंकगणित से लिखा है ना, उसमें जो दो संख्या लिखी है उसके एक डिवाइडेड बाय वन माइनस वन थर्ड चाहिए, तो एक को एक माइनस वन थर्ड यानी टू थर्ड हो गए ना, एक को टू थर्ड से डिवाइड करना है तो तीन बाय टू आ गए, उसी का अर्थ है वन प्लस हाफ, वन थर्ड मिला माइनस किए थे तो उसमें हाफ मिलाना, जो जोर से बोलो,
एक नंबर में कॉ प्लस कॉ बाय नौ लिखा है ना, यहाँ कॉ माइनस कॉ बाय नौ लिखा है, यहाँ एक प्लस हाफ और एक माइनस वन थर्ड लिखा है, इसके डिफरेंस क्यों आया,
वो अलग अलग गणित बता रहे हैं, वहाँ अगर हाफ लिखते हैं तो आगे वन बाय टू के बदले में वन बाय वन लिखना पड़ता, ख्याल है ना, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही रखना है, अगर वहां पर भी हम क माइनस हाफ लिखते तो आगे क्या उत्तर आता उसका, बोलो, वन प्लस वन आ जाता है ना, क्योंकि वो दो माइनस वन करना पड़ता है, यहाँ थ्री माइनस वन किया था तो दो आ गए, तो हमें समझाने के लिए कोई भी फिगर ले सकते हैं, वो यहीं पर रुकेंगे, अभी तो समय हो गया जावानी के ज्ञान